आप हैं SBS हिंदी के साथ। आज के मुख्य समाचार में, आज की चुनावी रक्षा बहस के दौरान सोलोमन आइलैंड रहा प्रमुख मुद्दा और राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना NDIS के अहम मुद्दे पर विपक्षी नेता अपनी पार्टी की नीति पर डावाडोल और खेल में रिचमंड सुपरस्टार डस्टिन मार्टिन इस सप्ताह के अंत में अपनी वापसी करने के लिए तैयार। फेडरल रक्षा मंत्री पीटर डटन का कहना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समस्याएं उनकी सरकार की बनाई हुई नहीं हैं। उनका यह बयान तब आया जब फेडरल सरकार ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन आइलैंड के संबंधों पर प्रभाव पड़ता दिख रहा है। सोलोमन के प्रधानमंत्री मनशे सोगावरे ने रातों रात अपनी संसद को बताया कि ऑस्ट्रेलिया उनके देश के साथ किंडरगार्टन के छात्रों की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसको देखरेख की आवश्यकता होती है। इस सप्ताह में दूसरी बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बात की है। नेशनल प्रेस क्लब में पीटर डटन को एक चुनावी बहस के दौरान इस मुद्दे पर दबाव डाला गया, मगर उन्होंने दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री सोगावरे ने ऑस्ट्रेलिया के आचरण की आलोचना नहीं की है।
He has not a word of criticism for our country. He's not saying that the relationship is broken. He's not saying that Australia is an unreliable partner. He's not saying that Scott Morrison hasn't engaged with him as a leader-to-leader in a leader-to-leader dialogue.
उधर लेबर पार्टी के रक्षा प्रवक्ता ब्रेंडन ओकॉनर ने अपनी पार्टी के नेता के बयान को एक बार फिर दोहराया और कहा कि सोलोमन आइलैंड के साथ संबंधों को सुधारने की जरूरत है।
The relationship with Pacific Island countries, in particular Solomon Islands, has deteriorated in recent times. You can imagine what Scott Morrison may have said as opposition leader if this had happened under Labor's watch. The fact is, it's happened under Scott Morrison's watch, and he has to take some responsibility.
इस चुनाव में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे भारी हैं, लेकिन इस बहस में कोई विशेष क्षण नहीं थे। पीटर डटन और ब्रैंडन ओकॉनर से चीन के खतरे, ऑस्ट्रेलिया के सबमरीन कार्यक्रम, रक्षा खर्च के स्तर और सोलोमन आइलैंड के साथ संबंधों पर पूछताछ की गई। दोनों राजनेताओं ने यह साबित करने की कोशिश की कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनावपूर्ण भू राजनीतिक माहौल को संभालने के लिए वे बेहतर विकल्प साबित होंगे। वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख मुद्दों को सूचीबद्ध करने में विफल रहने के बाद लेबर लीडर एंथनी एल्बनीसी को नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम के लिए अपनी पार्टी की नीति के बारे में अपनी जानकारी पर कड़े प्रश्नों का सामना करना पड़ा। पत्रकारों ने श्री अल्बनीसी पर दबाव डाला कि उनकी पार्टी के NDIS प्लेटफॉर्म के लिए 6 मुख्य बिंदु क्या हैं, लेकिन वे इसका जवाब नहीं दे पाए। उन बिंदुओं में स्टाफिंग कैप्स हटाना, असुरक्षित लेबर हायर अरेंजमेंट को कम करना, वकीलों पर होने वाले खर्च को रोकना, दक्षता को बढ़ावा देना, कटौती को रोकना और क्षेत्रीय पहुंच में सुधार लाना शामिल है। एक पत्रकार के साथ तीखी बहस के दौरान श्री अल्बनीसी को उनके जवाब में सहायता करने के लिए एक सलाहकार ने उनकी नीति का संक्षिप्त विवरण पकड़ाया था।
What we will do is put people at the center of the NDIS.
What are the no, Mr. Albanese? What are the other five points, Mr. Albanese?
We will put people. It is all around the theme of putting people. Putting people. We will put people. We will put people at the center of the NDIS. Mark. We will put people at the center of the NDIS. All of our programs are based upon that.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि वह शहर के भीतरी सीटों के मॉडरेट सांसदों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। इनमें वे सभी सांसद शामिल हैं जो स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ कड़ी टक्कर में हैं। श्री मॉरिसन ने अपनी पांचवी चुनाव अभियान यात्रा वेस्टर्न सिडनी इलेक्ट्रेट ऑफ पैरामेटा में की, जहां लेबर सांसद जस्टिन एलियट की जीत ने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन श्री मॉरिसन अब तक वेंटवर्थ और नॉर्थ सिडनी जैसे संसदीय क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाए हैं, जहां विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी छवि अच्छी नहीं है। श्री मॉरिसन कहते हैं कि अंत में चुनाव तो उन दो दलों के बीच एक प्रतियोगिता है जो सरकार बना सकते हैं, और उनका ध्यान इसी पर केंद्रित है।
At this campaign, there's a choice. There's a choice between a Labor government and a Liberal-led government, a Liberal National government. And in this seat right here, and all the seats I'm visiting around the country, I'm particularly focused on the contest that is happening between your two alternatives for government. Now, I've made the point very clear about independence, that that's a vote for chaos. It's a vote for instability. It's a vote for instability.
क्वींसलैंड में 30 डिग्री के करीब तापमान में लगभग 6 घंटे के लिए एक प्री स्कूलर को मिनी बस में छोड़े जाने के मामले में पुलिस को सुरक्षा प्रक्रियाओं के उल्लंघन के सबूत मिले हैं। 3 वर्षीय नेवे ऑस्टिन बुधवार दोपहर 3 बजे से ठीक पहले रॉक हैम्पटन के पास लेस्माइली अर्ली लर्निंग सेंटर के बाहर गर्म वाहन में अर्ध बेहोश पाई गई थी। किडनी फेलियर के इलाज के लिए उसे ब्रिस्बेन ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि वह खतरे से बाहर हैं। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डैरेन शैडलो ने कहा कि वह बच्ची सुबह 9 बजे से बस में थी और हो सकता है कि गलती से वहाँ छूट गई हो।
It would appear that there were some breaches of procedures, and again, that will form part of our investigation. Obviously, Department of Education are the regulatory body in relation to this, so we will be working in conjunction with them. We've declared crime scene on the bus and the childcare centre at this stage, so the childcare centre will not be operating until we've released that crime scene, which could take a couple of days.
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मारियोपोल में अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट में 300 से अधिक नागरिकों को निकाला गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी सैनिकों ने इस प्लांट पर हमले किए, लेकिन रूसी पक्ष ने इन आरोपों का खंडन किया है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूसी अधिकारियों के साथ एक समझौता किया जाएगा जिसमें अलग अलग शहरों में फंसे यूक्रेन वासियों को निकालने के लिए 3 दिवसीय युद्ध विराम आयोजित होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से शेष लोगों को बचाने और घायलों की सहायता करने का आह्वान किया।
The second phase of our evacuation operation in Mariupol ended today. 344 people were successfully evacuated from the city and the outskirts. That's how many people left today for Zaporizhzhia. Our team is preparing to meet them in the same way as over 150 people who were successfully transported from Azovstal. All of them will get the necessary assistance. All of them will be treated in the most supportive manner by our state.
लैंडकेयर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नेशन पर्सपेक्टिव्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूलों में शिक्षण का एक नया संसाधन शुरू कर रहा है। ये कार्यक्रम फर्स्ट नेशंस के शिक्षक और वरिंजरी पुरुष एडम शिप के साथ बनाया गया, जिसमें जूनियर लैंडकेयर प्रोग्राम के लिए 10 नई गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों का उपयोग पूरे ऑस्ट्रेलिया के शिक्षकों द्वारा फर्स्ट नेशंस के विषयों पर पढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिसमें मौसम और स्थानीय ऋतु, स्वदेशी पौधों का बगीचा बनाना और फर्स्ट नेशंस के लोगों की भाषाओं के माध्यम से आप किस देश में हैं इसकी खोज करना शामिल है। जूनियर लैंड के प्रोग्राम मैनेजर जो स्टेंटफर्ट का कहना है कि कक्षाओं में फर्स्ट नेशंस के दृष्टिकोण को पढ़ाने से बच्चे पर्यावरण की देखभाल करना अच्छे से समझ पाएंगे।
I think it's important for all Australians to learn about the traditional custodians of our country. And we need to start embedding their knowledge and the culture of our First Nations people into the work that we do, thinking about the practices that they used to do and getting our children to learn and value the rich culture and their deep love for the environment.
उधर विकलांगता अधिवक्ता ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक दलों से एक कोविड 19 रिकवरी योजना स्थापित करने का आग्रह कर रहे हैं। यह समूह आने वाली सरकार को बड़ी ज़रूरतों का पूरा करने के लिए एक योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें महामारी से होने वाले मानसिक और शारीरिक नुकसान को कम करने के लिए अधिक स्वास्थ्य सेवा, लॉन्ग कोविड से ग्रसित लोगों की ज़रूरतों के लिए और भविष्य के लिए योजना प्रदान करना शामिल है। द नेशनल एथनिक डिसेबिलिटी अलायंस के नीति अधिकारी डोमिनिक गोल्डिंग ने SBS न्यूज को बताया कि इन समुदायों के लिए महामारी खत्म नहीं हुई है।
There's been lots of information out there, but most of the information for migrants and refugees has not been specific in regard to what services and support can keep our community safe from COVID. Also, there's been not enough work in terms of cutting through a lot of the misinformation that is out there within the diversity of our communities.
उधर भारत में कोविड 19 के मामलों में एक बार फिर तेजी से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3,205 मामले सामने आए और 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 2,802 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। भारत में अब सक्रिय मामलों की दर 0.4% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 72 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 55.19 रुपए हो गई है। खेल समाचार में IPL 2022 के 49वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रनों से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और बैंगलोर ने 8 विकेट गंवाकर 173 रन बनाए। चेन्नई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर केवल 160 रन ही बना सकी। इस जीत से RCB ने अंक तालिका में टॉप 4 में जगह बना ली है। रिचमंड सुपरस्टार डस्टिन मार्टिन कॉलिंगवुड के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग में अनुमानित समय से पहले ही संभावित वापसी करेंगे। कोच डेमियन हार्डविक ने कहा कि टाइगर्स टीम को इस बात की चिंता कभी नहीं थी कि वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 3 बार नॉर्म स्मिथ मेडलिस्ट पाने वाले ये खिलाड़ी अपने पिता की मृत्यु के बाद से छुट्टी पर थे और खेल के पहले चरण से ही खेल का हिस्सा नहीं थे। श्री मार्टिन 2 हफ्ते पहले पंट रोड पर प्रशिक्षण के लिए लौटे और श्री हार्डविक ने पुष्टि की कि वे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शनिवार के खेल में भाग लेंगे। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में धूप खिली रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 24 डिग्री। एडलेड में 1 या 2 बौछार की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक जाएगा। मेलबर्न में कल बारिश के आसार और यहां का न्यूनतम तापमान भी 6 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। कैनबरा में कल आंशिक बादल रहने की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 0 और अधिकतम तापमान 12 डिग्री। सिडनी में भी मौसम साफ और धूप की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 21 डिग्री। ब्रिस्बेन में कल बारिश की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 26 डिग्री। डार्विन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में मौसम काफी गर्म रहेगा और वहां का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 41 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।